प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 25 मई 2016 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल हमेशा की तरह आज भी आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इसी क्रम में मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 11 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की सितंबर अक्टूबर में होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं आलोक कुमार सुधांशु, आप भागलपुर बिहार से हैं, मुनिंद्र मांझी दिल्ली से, अमित कुमार वर्मा इंदौर से, विनीत जैन बरेठा सागर मध्य प्रदेश से, सजल जैन जैतपुर सागर मध्य प्रदेश से, वैभव शर्मा दिल्ली से, मोतीराम जाट चित्तौड़गढ़ राजस्थान से, गगन खान जैसलमेर राजस्थान से, शोभना भारद्वाज बालाघाट मध्य प्रदेश से, विशाल महाजन पठानकोट पंजाब से और उमा एटा उत्तर प्रदेश से। तो आलोक, मुनिंद्र, अमित, विनीत, सजल, वैभव, मोतीराम, गागन, शोभना, विशाल और उमा, आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, इस स्वागत के बाद अब अवसर है बधाई देने का, और यह बधाई दी जा रही है ऋतु अग्रवाल को जो नागपुर कोरिया छत्तीसगढ़ से हैं। ऋतु अग्रवाल हमारे फर्स्ट बैच की स्टूडेंट रही हैं और मुझे उनका मैसेज मिला है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ का जो प्री एग्जाम था सिविल सर्विस का वो क्वालिफाई कर लिया है। तो ऋतु, इसके लिए मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं की तरफ से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की तरफ से, मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की तरफ से और अपनी ओर से भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मेंस और इंटरव्यू की बहुत बहुत बेहतर सफलता के लिए शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। साथ ही साथ ईश्वर से हम सब प्रार्थना भी करते हैं कि जो आंखों में जो आपके एक सपना पल रहा है, आपकी आंखों में नहीं बल्कि आपसे जुड़े सभी लोगों की आंखों में जो सपना पल रहा है, नो डाउट कि उसमें हम सबकी भी आंखें शामिल हैं, उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता दिलवाए। एक बार फिर से ऋतु बहुत बहुत बधाई। मित्रों, सूचना के तहत बस वही है कि आप सब करेंट कंटेंट को जरूर देखने की कोशिश करें, उसे बिल्कुल भी मिस न करें। हो सकता है कि अभी आपको उसकी इम्पोर्टेंस इतनी न लग रही हो, हालांकि आप लोगों के मेल से ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं है, उसमें आप लोग उसके प्रति बड़ा उत्साह प्रदर्शित कर रहे हैं, फिर भी कभी चूक हो जाती है, इसलिए बीच बीच में मैं आप लोगों को पुनर्स्मृति करा देता हूं कि प्लीज उसे जरूर जाएं और उसे याद भी रखने की कोशिश करें, बीच बीच में दोहराते रहें, क्योंकि आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद, एटलीस्ट 4-6 महीने का वक्त तो दीजिए, आपके पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, जिनके परीक्षा में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावनाएं होती हैं, उनके लिए इतने ज्यादा कंटेंट इकट्ठे हो जाएंगे और सबसे बड़ी बात है कि बड़े महत्वपूर्ण और बिल्कुल लेटेस्ट कंटेंट इकट्ठे हो जाएंगे कि आप फिर अपने अंदर एक अलग तरह की ताकत महसूस करेंगे और फिर मुझे लगता है कि शायद आपकी इस समस्या का काफी कुछ समाधान हो जाए कि सर एनालिसिस कैसे करते हैं। दरअसल जब हमारे पास सामग्री नहीं होती है तो एनालिसिस की भी संभावनाएं दिखाई नहीं देती। जब आपके पास करंट कंटेंट के तहत दिमाग में चीजें होने लगेंगी तो आप देखेंगे कि दिमाग का कुछ मैकेनिज्म यही है कि आपका दिमाग उनका इस्तेमाल करने के लिए छटपटाने लगेगा और उसी छटपटाने के प्रोसेस में आप एनालिसिस करने लगेंगे। तो इसलिए मित्रों, प्लीज करंट कंटेंट को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। मित्रों, मैंने लाइफ मैनेजमेंट के अंतर्गत कल आप लोगों से धैर्य के बारे में कुछ बातें की थी, कुछ बातें हम उसी के बारे में आज और करेंगे, कुछ और दूसरे इश्यूज पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं एक बार आप लोगों से फिर से अपील करता हूं कि आप लोग की जो रियल प्रॉब्लम है, जो आप महसूस करते हैं, उसके बारे में मुझे लिख कर भेजें और ताकि मैं उन्हें ही लाइफ मैनेजमेंट में लेकर चलना पसंद करूंगा, लेकर चल सकूं, क्योंकि वो आप लोगों के फिर ज्यादा काम के होगा। आप लोगों में से कुछ लिख करके भेजते हैं और हो सकता है कि मैं सभी चीजों, सभी सब्जेक्ट को नहीं ले पाता, लेकिन उसका मतलब आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मैं उन्हें इग्नोर करता हूं। सच बात यह है कि मैं जो सब्जेक्ट लेता हूं, आप ही में से किसी न किसी के द्वारा दिया गया वो सब्जेक्ट होता है। मुझे उसके लिए कई आधार चयन का अपनाना पड़ता है, जैसे कि इस पर्टिकुलर विषय पर कितने दिन पहले मैं कुछ कह चुका हूं, ये वाकई में ये जो प्रॉब्लम है कितने ज्यादा से ज्यादा लड़कों को रिप्रेजेंट करेगी, ये जो प्रॉब्लम है ये कितनी सच में कठिन प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम है इसके निदान क्या और दूसरी जगह है, अगर दूसरी जगह उसका सलूशन है तो फिर मैं उसे थोड़ा सा नीचे की तरफ डाल दूंगा। तो वो मेरे अपने चयन के आधार होते हैं, तो उसे आप लेकर न चलें, लेकिन आप लोगों की जो अपनी समस्याएं हो प्लीज आप उन्हें लिखकर भेजें ताकि उन्हें मैं लाइफ मैनेजमेंट में शामिल कर सकूं। दोस्तों, मैंने धैर्य की बात कही थी आपसे, अब मैं धैर्य के थोड़े से मनोविज्ञान पर आपको मनोविज्ञान की तरफ ले जाना चाहूंगा। मित्रों, जो मैंने कल कहा था कि हर काम के होने की एक गति होती है, हर काम को करने की एक गति होती है और होने का एक समय होता है, समय और गति। क्रिकेट का जो पूरा का पूरा खेल है, क्रिकेट के खेल का कमाल क्या है, अगर उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में करेंगे तो वही है समय और गति का तालमेल। आप किसी भी क्रिकेटर से पूछ करके देखें, हाँ फिर वो फोर्स भी उसमें आ जाता है कि आप कितने फोर्स से उसको हिट कर रहे हैं, किस एंगल से आप हिट कर रहे हैं, फिजिक्स की वो थ्योरी भी आ जाती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसकी गति और समय की टाइमिंग्स कितने अच्छे आप कर पाते हैं। मित्रों, जैसे मान लीजिए कि आप कभी चावल पकाइए, अगर आप लोगों में से किसी को अनुभव नहीं होगा तो अपनी माँ से पूछिए, बहन से पूछिए जो चावल बनाती है, राइट। आप थोड़े से चावल लेते हैं और फिर उसमें उसी अनुपात उसका जो भी होता है उसमें पानी डाल देते हैं, कुकर में बंद कर देते हैं और इसके बाद उसे चूल्हे पर चढ़ा देते हैं, गैस, आजकल तो गैस पर चढ़ा देते हैं कहना चाहिए, राइट। अब आपके पास दो तरीका है, एक तरीका यह है कि आप उसे धीरे धीरे धीमी आंच कर दें और उसे पकने दें, चावल को पकने दें, हो सकता है कि उसमें 10-15 मिनट लगे। दूसरा तरीका यह भी कि आप आंच तेज कर दें, भैया उबलना ही तो है ताकि वो आग जल्दी, पानी जल्दी से उबल जाए, चावल जल्दी से पक जाए और आप 15 मिनट की बजाय 5-7 मिनट में इससे फारिग हो जाएं, चावल बन जाने के बाद आप अपना उसे उतारें। मित्रों, सच बात है कि दोनों में ही चावल पकेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं, चावल पक जाएंगे। हाँ, ये बात अलग है कि जो आपने आंच तेज कर दी है उसमें अब चावल के जल जाने का भी खतरा हो सकता है, चावल जो है नीचे तल पर हो सकता है कि थोड़े से जल जाए। चलिए हम उसकी बात नहीं करते हैं, अब हम बात करते हैं स्वाद की और चावल के पकने की क्वालिटी की। आपके पास अपना अनुभव होगा और अगर आपके पास अपना अनुभव ना हो तो प्लीज इस अनुभव को भी आप शेयर करें। आपके पास अनुभव होगा तो तभी शेयर करेंगे, अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो दूसरे के अनुभव से आप जानकारी लें, अपनी मां से पूछें, बहन से पूछे, वो बताएंगे कि जो चावल जिसको हम भात कहते हैं बन जाने के बाद धीमी आंच में पका है, वो उसके जो दाने होंगे वो बड़े खिले हुए दाने होंगे, बड़े अलग अलग दाने होंगे, स्पष्ट रूप से बड़े सुंदर दिखेंगे आपको और बहुत अच्छे से पके हुए होंगे, और बट नेचुरल है कि इसकी वजह से उसका स्वाद भी बेहतर हो जाएगा, बजाय उसके कि जिस भात को आपने तेजी से तेज आंच में पकाया है, ये फर्क पड़ता है। इसको आप बहुत सी चीजों पर अप्लाई कर सकते, किसी भी चीज पर आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप रोटियां सेक लीजिए, चाहे आप शकरगंदी सेक लीजिए, आप कोयले में सेक करके देखिए। छत्तीसगढ़ में एक रोटी बनती है, मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद है, उसको कहते अंगाकड़, छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट इसको समझ पाएंगे। बेसिकली होता यह कि वो मल्टीग्रेन रोटी होती, बड़ी मोटी रोटी होती है और उस मोटी रोटी को पकाया जाता है, बहुत लंबे समय तक पकाया जाता है, धीमी आंच में पकाया जाता है। होता यह कि उस रोटी को बनाने के बाद बेलेंगे क्या, उसको हाथ से ही कर सकेंगे, उतनी मोटी रोटी होती है वो, बहुत मोटी रोटी को करने के बाद वहां जो पलाश के पत्ते आते हैं उन पलाश के पत्तों में ढक से ढक दिया जाता है चारों तरफ से, और फिर उस रोटी को अंगारों में रख दिया जाता है, और कई घंटों तक फिर वो रोटी अंगारों में पकती रहती है और इसके बाद फिर उस रोटी को निकाल लिया जाता है। शायद इसी वजह से उसका नाम रखा गया है अंगाकड़, यानी कि अंगार में वो पक रही हो, अंगार में अकड़ जाती हो, अकड़ जाने वाली रोटी शायद अंगाकड़ कहलाती होगी, पता नहीं वो नाम कैसे रखा। मित्रों, ये रोटी हम लोगों ने बचपन में खाई थी, राइट। अभी जब मैं कभी भी छत्तीसगढ़ दौरे पर जाता था तो वहां हमारा ऑफिस होता था और ऐसी बातचीत में मैंने चर्चा कर दी थी कि मुझे बहुत पसंद है, तो हमारे जो ड्राइवर थे वहां का, रायपुर के छत्तीसगढ़ के थे, तो वो एक दिन अंगाकड़ सुबह सुबह ले आए कि सर आपको बहुत पसंद है और मैं ये बनवा कर लाया हूं, आप खाइए। मैं बड़ा खुश हो गया कि अरे चलिए, मेरे संकोच के साथ धन्यवाद दिया मैंने और फिर वो खाया। लेकिन मित्रों, उस रोटी में वो स्वाद नहीं था, तो मैंने पूछा कि ये अंगाकड़ जो है ना, ये कहां कैसे बनाया है। तो उसने बताया कि वही जो गैस चूल्हा और उस तरह से होता है उसमें वो रोटी पकाई गई है। अब आप देखें कि जो धीमी आंच में जो रोटी पकी उसका स्वाद बिल्कुल डिफरेंट है, और ये पक तो गई है लेकिन इसका स्वाद बिल्कुल डिफरेंट होता है। दोस्तों, इसे आप धैर्य पर अप्लाई कर लीजिए और सारे काम पर अप्लाई कर लीजिए। ये धैर्य की महत्ता होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं धैर्य का मतलब स्लो, नॉट एट ऑल, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि धैर्य का मतलब स्लो है। धैर्य का मतलब है कि हर काम को करने की एक आदर्श गति होती है, आदर्श ड्यूरेशन होता है, हमें उस काम को उसी गति से उसी आदर्श समय में करना चाहिए। जैसे हमारा हृदय है तो यह माना जाता है कि एक मिनट में यह 70 से 75 के बीच में धड़कता है, 72 उसका आदर्शतम है, ठीक है, 70 से 75 के बीच में धड़क रहा है। जब हम दौड़ते हैं तो नो डाउट कि इसकी धड़कन और तेज हो जाएगी, 90 तक 100 तक हो जाएगी, कोई बात नहीं, वो एक पर्टिकुलर थोड़े से टाइम के लिए होगी क्योंकि फिर वो दौड़ने के हिसाब से अपने को एडजस्ट करेगा हमारा हृदय। अदरवाइज जो उसका आदर्श जो समय है, गति है, जो काउंटिंग है, गिनती है, वो 72 की है और वो ऑलमोस्ट 70 से 75 के बीच में वो धड़कता रहता है। तो दोस्तों, जब हम धैर्य के इस सिद्धांत को समझ लेते हैं तो हमारा जो कैनवास है, जो मस्तिष्क है, जहां सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं, जहां इमेजेस इमर्ज होते हैं, इमेजेस बनते हैं, और जो पुराने बने हुए इमेज हैं वो उभरते हैं, उनको वक्त मिल जाता है। अगर वो इमेज बन रहे हैं तो गाढ़े रूप में बनने के लिए उनको वक्त मिल जाता है, और अगर बनी हुई इमेज को आप रिकॉल करना चाह रहे हैं, फिर से लाना चाह रहे हैं, फिर से उभारना चाह रहे हैं, तो उसको आकर के शेप लेने में, गाढ़े रंग में परिवर्तित होने का वक्त मिल जाता है। लेकिन हम सब इतनी भाग दौड़ में लगे हुए लगता है कि ज्यादा से ज्यादा काम निपटाओ, ज्यादा से ज्यादा काम कर लो। ये समझ नहीं पा रहे हैं लोग कि ज्यादा से ज्यादा काम करने में, सच पूछे तो कोई भी काम सर्वोत्तम तरीके से नहीं हो पाता है। हाँ, हर काम थोड़ा थोड़ा हो जाता है, और जब थोड़ा थोड़ा हो जाता है मित्रों, तो फिर सफलता भी थोड़ी थोड़ी मिलती है। किसी एक फील्ड में हम फिर एक्सेल नहीं कर पाते। अगर आप इसे सिविल सर्विस की प्रिपरेशन पर ले लें तो पता लगता है आपको ये भी पढ़ना है। आप केवल उसको, चूंकि एक दिन में आपने ढेर सारे प्लान कर रखे हैं कि इतनी सारी चीजें पढ़नी है और सारी चीजें पूरी भी करनी है, नहीं तो आपको अपराध बोध होने लगता है या लगने लगता है, आप खाली पर महसूस करने लगते हैं कि अरे ये चीज छूट गई, ये हमने नहीं किया। तो आप हर चीज को पढ़ते कम है, निपटाते ज्यादा है। आप, मैं कह रहा हूं तो उसमें मैं भी शामिल हूं, मेरे साथ भी ऐसा होता है, कभी कभी हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं उनके साथ ऐसा न हो। दोस्तों, मैं भी आप लोगों की तरह ही इसी धारा में बह रहा हूं, स्वाभाविक है कि मैं भी उसका शिकार होता हूं, ऐसा नहीं है। मैं जो आपके बारे में बातें कर रहा हूं उसमें मैं खुद भी अपने आप को शामिल करके आपकी बातें कर रहा हूं। सच पूछे तो कहीं ना कहीं मैं आपसे अपने अनुभव ही शेयर कर रहा हूं। तो ये हमारे आज के समय का संकट है, क्योंकि अभी जो पूरी की पूरी जो हमारी गति है वो फास्ट स्पीड की गति है। हर चीज में आप देखते हैं फास्ट फास्ट फूड। हम लोगों के समय में फिल्में लगती थी एक एक महीने तक टॉकीज में लगी हुई हैं। एक गाने, कुछ गाने हिट गाने हैं, साल साल दो दो साल तक लगातार चल रहे हैं, बिना आपको याद किए वो याद हो जाते हैं, उनकी ड्यूरेशन देखिए। और अब सुपरहिट फिल्में भी टॉकीज में मुश्किल से 2 सप्ताह तक चलती हैं। तो फटाफट का जमाना है, टेस्ट मैच खत्म होते जा रहे हैं। पहले 5 दिन का टेस्ट होता था, फिर वो 50 ओवर का हुआ, अब वो 20 ओवर का हो गया, आगे भगवान जाने क्या होगा हम नहीं जानते हैं। तो ये जो तेज गति का जो जीवन होता चला जा रहा है, निश्चित रूप से इसका हमारी चेतना पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। हम बच नहीं सकते मित्रों, लेकिन मेरा जो आपसे अनुरोध है, आप सबसे अनुरोध है, चाहे वो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या आम जीवन में है, कि अपने जीवन के कुछ चीजों को आप ऐसा छांट करके अलग कर लीजिए जिन्हें आप इन तेज रफ्तार से बचा सके, कि मुझे यहां तेज रफ्तार नहीं दिखानी है, बाकी मैं तेज रफ्तार भले ही दिखाता रहूंगा। सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिहाज से पढ़ाई में आप उतनी तेज रफ्तार मत दिखाइए कि वो रफ्तार ही इतनी तेज हो जाए कि अंततः हमें गिरने और थकने के सिवाय कुछ भी हासिल न हो। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं AIR न्यूज पर। फ्रेंड्स, AIR न्यूज में कुछ खास ऐसा नहीं है, एक दो चीजें जो छोटी छोटी बातें हैं वो मैं आपसे शेयर करके और अपने उस वायदे को मैं आज पूरा करना चाहूंगा जो मैंने ऐसे के बारे में आप लोगों से किया हुआ है, और आज मौका है कि उसे पूरा किया जा सकता है। फ्रेंड्स, कल के AIR न्यूज में आपने एक खबर सुनी कि जो हमारे सर्वानंद सोनोवाल जी हैं, असम के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है और भारतीय जनता पार्टी के वो लीडर हैं। ये मतलब असम में जो भारतीय जनता पार्टी की सफलता है, ये बहुत ही ऐतिहासिक सफलता है। आप कह लीजिए कि जो असम है वो तो नॉर्थ ईस्ट का बिल्कुल गेट ही है, एंट्री गेट है। अगर आप मैप में देखेंगे तो अगर आपको नॉर्थ ईस्ट जाना है तो असम से ही आपको एक छोटी सी पट्टी मिलेगी, वेस्ट बंगाल और असम के बीच में एक छोटी सी पट्टी मिलेगी, फिर असम से फिर आप एक बार नॉर्थ ईस्ट में एंटर कर जाते हैं। तो कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षक ये मान रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के फैलाव का प्रतीक है और कोई ताज्जुब नहीं कि वो नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत जल्दी अपना फैलाव कर ले। खैर, वो एक राजनीतिक पर्यवेक्षकों की बात है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ये सफलता एक भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी सफलता है। मित्रों, जब आप न्यूज सुन रहे थे तो उसमें फिर आपने प्रधानमंत्री जी का एक वक्तव्य सुना होगा, हिंदी में वो शब्द लाया गया सहयोगी संघवाद, जिसे कभी कभी सहकारी संघवाद भी हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी बनकर के आए थे तब ये शब्द बहुत शुरू शुरू में बहुत आया था कि हम राज्यों को लेकर के चलेंगे। बेसिकली ये जो सहयोगी संघवाद है ये है क्या, देखिए फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का, ज्यादातर देशों का स्ट्रक्चर आपको फेडरल ही मिलेगा जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हो गई है। अमेरिका फेडरल स्ट्रक्चर में यूनाइटेड स्टेट, यानी कि कई स्टेट यूनाइट होकर के और अमेरिका नामक देश का उन्होंने निर्माण किया है। भारत भी उसी तरह का, भारत गणराज्य है, कई स्टेट मिलकर के एक राज्य बना, देश का निर्माण हुआ है जिसमें हमारे 30 राज्य, कुछ केंद्र शासित प्रदेश या 29 राज्य। तो मित्रों, ये जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है उसका मतलब यही होता है कि केंद्र के पास कुछ विषय होंगे जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करेगा और इसके बाद फिर अलग अलग राज्य होंगे, राज्य बनाए किस आधार पर जाएंगे, भाषा के आधार पर बनाए जा सकते हैं, ज्योग्राफिकल डिविजन्स के आधार पर बनाए जा सकते हैं, कल्चर के आधार पर बनाए जा सकते हैं, बहुत से आधार होते हैं। लेकिन भारत में जो स्टेट रिऑर्गेनाइज किया गया था सबसे पहली बार तो वो भाषा के आधार पर किया गया था। अब सवाल यह है कि चूंकि एक बड़े देश में, भारत जैसे बड़े देश में बहुत संस्कृति है, बहुत सी भाषाएं हैं, सबकी अपने अपने जातिगत आधार हैं, अपनी अपनी आर्थिक जरूरतें हैं, सामाजिक विकास के अपने अलग अलग मापदंड और अलग अलग आवश्यकताएं और लेयर्स हैं, तो स्वाभाविक रूप से देश अगर केंद्र नीति बनाता है तो वो पूरे देश के लिए बनाएगा, लेकिन वो हो सकता है कि राज्यों को सूट न करे। तो ऐसी स्थिति में राज्यों को पूरी आजादी दी जाती है कि वो अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी नीतियां बनाए, राइट? तो केंद्र एक तरह से स्वतंत्र रूप में काम करते हैं। हमारे यहां 3 सूचियां इसीलिए बनाई गई हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची पर राज्यों को पूरा अधिकार है कि वो कानून बनाए, समवर्ती सूची जो है कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें दोनों ही मिलकर के कानून बना सकते हैं, राज्य भी बना सकते हैं, केंद्र भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो फेडरलिज्म है ये सच पूछे तो भारतीय संविधान की आत्मा है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली की भी आत्मा है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि इस संघवाद पर एक तरह से चोट पहुंचने की बात कही जाती है। जैसे अभी अरुणाचल प्रदेश और स्पेशली उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उसे संघवाद की आत्मा के विरोध में एक तरह से उठाया गया कदम माना गया। आपने प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य में सुना कि जो स्टेट्स हैं उनको विकास करने के लिए अधिकार दिए जाएंगे, जो पीछे रह जाएंगे उनको हाथ पकड़ करके आगे लाया जाएगा, तो यानी कि केंद्रों को विकसित होने का पूरा मौका दिया जाएगा। और सच पूछे राज्यों को विकसित होने का पूरा मौका दिया जाएगा। और सच पूछे तो जब हमारे राज्य विकास करेंगे तभी अल्टीमेटली देश भी विकास करेगा। दोस्तों मैंने थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड आपको इसलिए दी है क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पॉलिटिकल साइंस का, कॉन्स्टिट्यूशन का। और जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर में, मेंस में, मैंने ये देखा है कि लगभग एकाध साल के गैप के बाद सहयोगी संघवाद पर कोई न कोई प्रश्न आ ही जाता है, लेकिन स्ट्रेट नहीं आता है। लेटेस्ट सिचुएशन जो होती है उसके आधार को, उसको आधार बना करके और इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ये बात मैं इससे पहले भी आप लोगों से कई बार कह चुका हूं। दोस्तों जो दूसरी इंपॉर्टेंट जो खबर के रूप में है वो है कि नितिन गडकरी जी सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं, हो ही गए हैं, और आप देख रहे हैं कि अभी सभी मिनिस्टर्स जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं आकर के एक तरह से जनता के सामने बता रहे हैं कि उनके मंत्रालय ने अब तक क्या किया है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। उसमें उन्होंने एक बात कही है जो मुझे लगता है कि आपके दिमाग में रहनी चाहिए, और स्पेशली तब जबकि दिसंबर में मेंस होने जा रहे हैं उस लिहाज से, क्योंकि आंकड़े हैं कुछ समय के बाद तो बदल जाएंगे नेक्स्ट ईयर तक। उन्होंने कहा है कि जो आधारभूत संरचना जो ट्रांसपोर्ट का फील्ड है ना, जिसमें सड़कें हैं, जिसमें जलयान है, जिसमें पोर्ट है, जिसमें एयरपोर्ट भी है, इन सब में उन्होंने बताया कि 25 लाख करोड़ रूपये के इन्वेस्टमेंट का प्लान है। 25 लाख करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी रकम है, 25 लाख करोड़। और उम्मीद है कि जब ये पैसा लगेगा तो 4 करोड़ रोजगार इससे उत्पन्न होंगे, तो एक बहुत बड़ी सफलता है। क्योंकि भारत के जो आर्थिक विकास की जब बात होती है कि भारत इतना पिछड़ा हुआ है, तो उसमें आधारभूत संरचना की कमी को सबसे पहले उठाया जाता है कि जब तक हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा स्ट्रांग नहीं होगा तब तक भारत आर्थिक प्रगति उतनी तेजी से नहीं कर सकता, गरीबी से मुक्त नहीं हो सकता, रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं करा सकता। और आप देख रहे हैं कि 2 क्षेत्रों में भारत को इस बीच पिछले 2 सालों में बहुत जबरदस्त सफलता मिलती भी दिखाई दे रही है। पहला नो डाउट ये ट्रांसपोर्ट का जो क्षेत्र है, पूरा परिवहन का क्षेत्र है, और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आधारभूत संरचना का, वो है एनर्जी। एनर्जी में भी आप देखेंगे कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर आप आज से 10 साल पहले 5 साल पहले को याद करें कि बिजली की कितनी कटौती होती थी, तो अब आपको लगेगा कि उसकी कटौती काफी कम होने लगी। शहरों में तो लगभग नहीं के बराबर ही हो गई है, हाँ गांव में कटौतियां थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन फिर भी उसका ड्यूरेशन काफी कम हो गया है, तो बिजली में भी काफी अच्छा काम हो रहा है। मित्रों इसके बाद एक खबर और थी जो एग्रीकल्चर को लेकर के थी, और उसमें सरकार का ये विजन, ये मतलब कह लीजिए कि एक उद्देश्य है या टारगेट है कि मार्च 2017 तक देश के सभी किसानों के मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, मतलब उनकी मिट्टी की क्वालिटी के बारे में उनको अवगत करा दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि जिस तरह जन धन योजना एक बहुत ही क्रांतिकारी योजना है, मुझे लगता है जिसके बहुत ही जबरदस्त प्रभाव भविष्य में दिखाई देंगे, ठीक उसी तरह से मुझे लगता है कि ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है इसके भी बहुत जबरदस्त प्रभाव होंगे। टोटल उत्पादन बढ़ने में, किसानों की आय की वृद्धि में, और साथ ही साथ सच पूछिए तो जो जमीन है उसकी गुणवत्ता की सुरक्षा की दृष्टि से भी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा यूरिया वगैरह का प्रयोग करने से और पेस्टिसाइड्स वगैरह से जो मिट्टी की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो बहुत तेजी से घटती जा रही है। किसानों को बहुत अच्छी जानकारी न होने की वजह से वो उसे भी खाद समझ करके और खूब डालने लगते हैं और मिट्टी खराब होती जा रही है। जब उनके पास उसका एक स्वास्थ्य कार्ड होगा तो उनको जानकारी होगी कि इसमें कितना खाद डालना चाहिए, किस तरीके से डालना चाहिए, तो उससे मिट्टी की गुणवत्ता में भी काफी सुधार आएगा। और ये भारत इंडियन एग्रीकल्चर के लिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात होगी। तो मित्रों जो AIR न्यूज की जहां तक बात है उसमें बस इतनी ही बातें थी जो हम लोग चर्चा कर सकते थे। फ्रेंड्स अब मैं आता हूं, जल्दी से मैं पूरा करना चाहूंगा आप लोगों को जो मैंने निबंध दिया था लास्ट सैटरडे से भी पिछले सैटरडे, एक निबंध मैंने लिखने के लिए दिया था 1000 से 1200 शब्दों के बीच में जो सिविल सर्विस में पूछा जाता है, और उसका विषय था वैचारिक स्वातंत्र बौद्धिक उत्कर्ष की आधार भूमि है, ये उसका विषय दिया गया था। दोस्तों पहले मैंने ये बताना चाहूंगा कि मैंने ये विषय क्यों लिया है ना, एक मैं अपनी तरफ से आपको सफाई दे दूं, मतलब आप ऐसा ना समझे कि मैं कुछ भी उठा करके और मैंने दे दिया है। आप 2015 का पेपर देखिए तो उसमें एक निबंध पूछा गया है, शब्द दुधारी तलवार होते हैं, मतलब जो शब्द होते हैं वो ऐसी तलवार होती है जिसके दोनों तरफ धार है, मतलब जिसके गर्दन पर पड़ेगी तो वो गर्दन कटेगी ही कटेगी, चाहे आप इधर से वार कर ले या उधर से वार कर ले। जो शब्द है, जो तीखे बोल होते हैं, उसको लेकर आधार बना करके वो बात कही गई थी। देखिए, इस तरह के जो सिविल सर्विस में निबंध दिए जाते हैं, आपको लग सकता है कि ये बिल्कुल अपनी तरफ से सोचा समझा निबंध, बिल्कुल स्वतंत्र निबंध है और कहीं से भी उठा लिया गया है। पिछले 3-4 साल के पेपर देखने के बाद मित्रों, मुझे लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। उन विषयों का कोई न कोई संबंध कंटेम्परेरी मामलों से होता है, समसामयिक घटनाओं से होता ही है। जैसे अगर हम शब्द दुधारी तलवार होती, अगर हम इसको, इस विषय को उठाएं, तो ये दिसंबर के एग्जाम में पूछा गया था, 2 महीने पहले लगभग पेपर सेट हो चुके होते हैं। तो अगर आप अक्टूबर से पहले की बात को लें, 2015 को याद करें, तो आप देखेंगे कि जो हमारे लीडर्स थे, वो लीडर्स अपनी भाषा के स्तर पर बहुत तीखे हो गए थे। एक दूसरे पर बहुत ही तीखे शब्दों से वार करना, व्यक्तिगत रूप से आघात करना, भड़काना, इस तरह की ढेर सारी बातें होने लगी थी। मतलब राजनीतिक नेताओं के बीच में आपसी में एक तरह से कड़वाहट की स्थिति आ गई थी, अखबारों में भी बहुत आ रहा था। और उसी समय आपको ध्यान होगा कि इस बात को भी बहुत उठाया गया कि असहिष्णुता का माहौल बन गया है। तो वो जो असहिष्णुता का माहौल था, वो कोई ऐसा नहीं कि एक्शन में कोई हो गया था, सौभाग्य से एक्शन में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन एक कटुता फैल गई थी। और उस कटुता का कारण था केवल तीखे व्यंगात्मक किस्म के बोल, स्टेटमेंट, कथन। तो मतलब कह लीजिए कि आप वाणी के वाण चल रहे थे। उसको आधार बना करके उन्होंने एक निबंध तैयार किया कि शब्द दुधारू तलवार होते। ये मैं अपने तरफ से बता रहा हूं, हो सकता है ऐसा न भी हो। तो दोस्तों, उसी को आधार बना करके फिर मैंने वैचारिक स्वातंत्र बौद्धिक उत्कर्ष की आधार भूमि है ये निबंध चुना। आप देख रहे हैं कि अब इसका मेरा आधार क्या है इस निबंध का, तो वो कि अभी कुछ समय से फिर से ये बात होने लगी है कि जैसे यूनिवर्सिटीज हैं, तो यूनिवर्सिटीज में भी अब उस तरह के बहस की स्वतंत्रता खत्म की जा रही है, सरकार हस्तक्षेप करने लगी है। दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके बारे में फिर लेख भी आए, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वहां एक विशेष विचारधारा के व्यक्ति को बैठाया जा रहा है, फिर उसके बारे में उनको स्वीकार नहीं किया जा रहा है, हड़ताल हो रही है। तो इस तरह की एक बात चलने लगी कि जो एक बौद्धिक संस्थान है, उस संस्थान में एक विशेष किस्म के विचार को इंजेक्ट करने की कोशिश हो रही है। पाठ्यक्रमों के बारे में भी कुछ इस तरह की बातें हुई कि साहब डाला जा रहा है, उसको निकाला जा रहा है। कितना सही है कितना गलत है ये अलग बात है ना, मैं तो एक माहौल की बात आपको बता रहा हूं कि इस तरह का माहौल बनने लगा, इस तरह की चर्चाएं होने लगी, आर्टिकल्स आने लगे। तो मित्रों, उसको लेकर के फिर मैंने ये निबंध फ्रेम किया कि अगर विचार की स्वतंत्रता नहीं होगी, तो फिर अगर हम सोचे कि हम बौद्धिक रूप से कोई बहुत आगे बढ़ जाएंगे, कुछ इनोवेशन कर लेंगे, कोई नया आइडिया आ जाएगा, कोई दर्शन शास्त्र पैदा, दर्शन पैदा हो जाएगा, वो संभव नहीं है, राइट? तो ये मैंने रीजन की बात बताई। मित्रों, अब मैं आपको जल्दी से पॉइंट्स बताता हूं कि इसको आप निबंध को लिखेंगे तो आप किन किन आधार पर लिखेंगे, और ये केवल मेरा आधार है ना, आप बिल्कुल मत समझिएगा कि केवल यही होना चाहिए। निबंध की यही खूबसूरती होती है कि वो सबके अपने अपने होते हैं। अगर आपने टीना डाबी का अभी एक 10 मिनट का जो मेरे पास ऑडियो आया था, मैं सुन रहा था, तो उसने बड़ी खूबसूरत बात कही, दो खूबसूरत बातें कही थी निबंध लिखने के बारे में। एक तो उन्होंने कहा कि जब आप पैरा बदलते हैं तो उनमें लिंक होना चाहिए, एक दूसरे में लिंक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले पैरा का संबंध दूसरे पैरा से नहीं है। यस, उसको मैं रिदम कहता हूं, आपके लेखन में एक लय होनी चाहिए, राइट? दूसरी बात उन्होंने बड़े मायूस मासूमियत के साथ में और बड़े खूबसूरत अंदाज में कह दी, बोलचाल की शैली में ही, कि देखिए जब वो निबंध को जब आपके जब जांचे एग्जामिनर, तो उसको ये लगना चाहिए कि आपको निबंध लिखना आता है। ये बड़ा अच्छा शब्द उन्होंने कहा, आपको निबंध लिखना आता है, मतलब यू नो द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग एस्से राइटिंग। तो बेसिकली ऐसे लिखना एक आर्ट है, ऐसे लिखना कोई बौद्धिक कमाल नहीं है, है ना? तो वहां एक्सप्रेशन पावर का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। जैसे मैं अगर इसके ऊपर अगर लिखता तो मैं अब आपको जल्दी से बता दूं कि जैसे मैं पहले इसको डिफाइन करता कि भाई वैचारिक स्वतंत्रता से क्या मतलब है। वैचारिक स्वतंत्रता का मतलब विचार की करने की स्वतंत्रता, आप विचार करते रहिए, कौन रोक रहा है, थोड़ी पता लग रहा है कि आप क्या विचार कर रहे हैं। तो वैचारिक स्वतंत्रता का मतलब जैसे पॉइंट हो जाएगा कि आपको सोचने की आजादी है ना, सोचने की आजादी भी एक बड़ी चीज होती है, मत समझिए कि आप चुपचाप सोच सकते हैं। फिर बोलने अभिव्यक्ति करने की आपको आजादी है, बहस करने आप बहस कर सकते हैं, अपना कंट्राडिक्टरी ओपिनियन दे सकते हैं, आपको किसी का भय नहीं है कि कोई सुन लेगा, अखबारों में छप जाएगा तो क्या होगा, आपके ऊपर अटैक हो जाएगा, कुछ लोग आ जाएंगे, कुछ करने लगेंगे। फिर भाषा की आजादी होनी चाहिए कि आप अपनी मातृभाषा में सोच सकें, आप अपनी भाषा में सोच सकें, क्योंकि उसमें तो सोचने की जो प्रबलता होती है आप दूसरी लैंग्वेज में सोच ही नहीं सकते। तो भाषा की फ्रीडम होनी चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहां नहीं है। इस अनुसंधान की फिर आपको फ्रीडम होनी चाहिए कि अगर मैं सोच रहा हूं और उस सोचने के लिए मुझे किसी प्रैक्टिकल की जरूरत पड़ रही है जैसे साइंस फील्ड में, तो मेरे पास वो फैसिलिटी होनी चाहिए ना। नहीं तो पता लगा कि मैं सोच रहा हूं और मुझे यहां फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो मैं अमेरिका चला जाऊंगा, नासा चला जाऊंगा और कहीं चला जाऊंगा, वो हमारे यहां होनी चाहिए। फिर अगर मैं सच में सोचने वाला व्यक्ति हूं या कोई भी सोचने वाला व्यक्ति है तो उसकी एक सोशल रिकॉग्निशन होनी चाहिए। आप देखें कि हमारे यहां गुरु को क्यों इतना सम्मान दिया गया था, या पुराने राजा महाराजाओं को देखिए कि किस तरह से जो साइंटिस्ट होते थे, जो कला साहित्य और संस्कृति के लोग होते थे, उनको राजपद दिए जाते थे, वो राजकवि की तरह होते थे, तो उनमें सम्मान होना चाहिए क्योंकि तभी लोग सोचने के क्षेत्र में आगे आएंगे, नहीं तो क्यों आएंगे, आखिर में उनका फिर अट्रैक्शन क्या होगा। इसी तरह से फिर उनको बहुत जरूरत आवश्यक है कि उनको आर्थिक मदद भी दी जाए क्योंकि आखिर में पेट तो मांगेगा ही। तो ये वैचारिक स्वातंत्र को सुनिश्चित करने वाले एक कुछ तत्व है, तो मैं इनको एलोबरेट करूंगा। फिर मैं दूंगा कि इसका प्रमाण क्या है कि सच में वैचारिक जो स्वातंत्र है वो बौद्धिक उत्कर्ष की आधार भूमि होती है, क्या कुछ ऐसा पीछे इससे पहले हुआ है। तो मैं 2-3 उदाहरण दे सकता हूं, जैसे भारत का ले लीजिए, 5वीं 6वीं शताब्दी, मतलब 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर के, आप बौद्ध धर्म जैन धर्म से लेकर के, और बाद की 5वीं 6वीं सदी तक का ले लीजिए जिसमें आर्यभट्ट, पाणिनी ये सब लोग हुए, नागार्जुन वगैरह सब हुए हैं। ये पूरा का पूरा एक 1000 साल का जो भारत का जबरदस्त इतिहास रहा है, ये भारत का बौद्धिक उत्कर्ष का मतलब चरम काल रहा है, गजब का भारतीय चिंतन सामने आया। तो वो क्यों चिंतन सामने आया था, उस समय के समाज को देखिए तो हमारे समाज में बहुत फ्रीडम थी। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को ध्यान होगा यूरोप का जो रिनेसा पीरियड है, सच पूछे तो आज जिस रूप में यूरोप दिखाई दे रहा है और इनफैक्ट कह लीजिए कि दुनिया दिखाई दे रही है, उसके केंद्र में वहां का रिनेसा पीरियड है जिसको हम पुनर्जागरण काल कहते हैं। पुनर्जागरण काल में जो फ्रीडम लोगों को मिली और जब राजसत्ता और चर्च बिल्कुल अलग अलग हो गए और इसके कारण जो फ्रीडम मिली, पहले तो चर्च का बहुत जबरदस्त प्रभुत्व था। आपने अगर कह दिया कि आप सूरज स्थिर है और पृथ्वी घूम रही है तो पता लगा गैलीलियो को उठा करके जेल में ही डाल दिया गया कि ये उल्टी बात कर रहा है। तो ये होता था, जब वो फ्रीडम मिली तो उसके वजह से सारे इन्वेंशन हुए। आज जो विज्ञान हमारे सामने दिखाई दे रहा है वो पुनर्जागरण काल की देन है। तो आप इन चीजों को देखकर इसको स्थापित करने के बाद फिर आप करेंगे कि जो चेतना की, अब थर्ड पॉइंट होगा कि जो हमारा कॉन्शियस है वो किस तरह से काम करता है, चेतना की कार्य प्रणाली क्या होती है। चेतना की कार्य प्रणाली होती है, चेतना बहुत स्वतंत्र रूप से उन्मुक्त विचरण करता है। अगर उसके उसके दिमाग में जरा सा भी उसकी उन्मुक्तता पर कोई दबाव आएगा तो वो फिर घूमना कम कर देगा, स्वप्न की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, स्वप्न दबने लगते हैं, जहां दमन होगा वहां स्वप्न बड़े अलग तरीके के हो जाएंगे। स्वप्न ये सब इनोवेशंस के लिए बहुत जरूरी होती है। जैसे रामानुजन को आप देखिए, रामानुजन यही कहते थे कि मुझे स्वप्न में चीजें आती हैं और होता है। तो जो चेतना की कार्य प्रणाली है, उस चेतना की कार्य प्रणाली के बारे में मैं थोड़ा सा इसका वर्णन करने के बाद और फिर मैं सिद्ध कर दूंगा कि वैचारिक स्वतंत्रता बौद्धिक उत्कर्ष की आधार भूमि होती है, और 1200 में मेरा निबंध ये पूरा हो जाएगा। तो मित्रों मैंने कुछ आप लोगों को पॉइंट्स दिए हैं, आप लोगों ने अपने अपना निबंध तैयार किया होगा, आप इवेलुएट कर सकते हैं, लेकिन इसको इवेलुएट करने का इसको बिल्कुल आधार मत मानिए। निबंध की यही खासियत होती है कि उसमें फ्रीडम बहुत होती है, आपको आजादी बहुत होती है ना। तो ये मैंने अपना निबंध लिखा, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि मेरा अपना निबंध है, आपका अपना निबंध भी हो सकता है। याद रखिए निबंध कभी भी गलत नहीं होते, निबंध या अच्छे होते हैं, मध्यम होते हैं, बेकार होते हैं, ये तो हो सकता है, लेकिन निबंध गलत नहीं होते हैं। राइट फ्रेंड, तो दोस्तों अब मैं आता हूं अखबारों की क्लिपिंग्स पर। बहुत से आज मैं आप लोगों को अखबारों की क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, सच पूछे तो पिछले दिनों जो कम अखबारों की क्लिपिंग्स दिए गए थे उन सब की आज भरपाई हो जाएगी, क्षतिपूर्ति हो जाएगी। तो मित्रों अखबारों की क्लिपिंग्स की चर्चा करना बिल्कुल आवश्यक नहीं है, आप सब नॉलेज सेंटर में जाकर के देख लीजिएगा। अब मैं ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और कुछ दोस्तों के नाम लेना चाहूंगा, वो हैं कर्णपाल सिंह बीकानेर राजस्थान से, स्वाति गुप्ता झालवाड़ राजस्थान से, प्रीति वांसोड़ दुर्ग छत्तीसगढ़ से, नितिन कुमार गाजियाबाद से, गौरव सिंह परिहार इलाहाबाद से, शिवांगी पांडे, नफीस अहमद गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, अभिनंद सुराना संजेली से, ब्रिजेश मिश्रा श्रीदेव तिवारी अमिता सिंह एटावा उत्तर प्रदेश से, विजय परमार पालिताना गुजरात से, शशि बिंदु दीपक कुमार प्रजापति महाराजगंज से, विजुंदा सेजुल कुमार रंजीता देवनाथ सुरभि अजीत कुमार नालंदा बिहार से, ललित कुमार चंडीगढ़ से और प्रियंका लिखार नागपुर महाराष्ट्र से। तो आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार। और मित्रों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।